सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 1 से लेकर 4 तक। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य के बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान, राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना और ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वो जो कुछ चाहता है करता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? राजा अधिकार का प्रतीक है। आप उसके पास आकर ये नहीं कह सकते हैं आप क्या कर रहे हो, और ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। पौलुस कहता है रोमियो 9 अध्याय 20 पद, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? राजा की प्रभुता परमेश्वर की प्रभुता का वर्णन करती है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 5 से लेकर 7 तक। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, ये उसको कौन बता सकता है? आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, भविष्य तो अनिश्चित होता है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वो उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। किसी भी मनुष्य का प्राण पर वश नहीं चल सकता है। जब मरने का समय आता है तब मृत्यु को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। सिर्फ एक है जिसने मृत्यु पर अधिकार का प्रयोग किया, और वो है यीशु मसीह। जब वो क्रूस पर था, यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसने पहले ही कह दिया था, यूहन्ना 10 अध्याय 18 पद, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। अपनी इस बात को, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, पूरा करने के लिए उसने क्रूस पर से चिल्लाकर कहा, यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद, पूरा हुआ। लूका 23 अध्याय 46 पद, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपना सर झुकाया और ऐसा लिखा है, प्राण त्याग दिए। उसने कहा, आत्मा अब तुम जा सकती हो, और वो मर गया। उसने अपने प्राण या आत्मा को छोड़ने या त्यागने की शक्ति थी, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 9 और 10। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यान पूर्वक देखने में, ये सब कुछ मैंने देखा, और ये भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। ये भी व्यर्थी है। जीवन चलता रहता है। जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन्हें भुला दिया जाता है, जीवन खाली है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। एक सामान्य गलती लोग करते हैं कि वे परमेश्वर के स्वभाव का गलत अर्थ निकालते हैं। एक खूबी परमेश्वर के स्वभाव की है कि वो विद्रोही मनुष्य के प्रति धीरज धरता है। परमेश्वर बहुत सहनशील है, वो बहुत कुछ सहन करता है, वो तुरंत दंड नहीं देता, लेकिन बहुत बार न्याय महीनों के लिए टाल देता है। इसलिए ऐसा लगता है कि बुरा मनुष्य बुराई से और बुरे विचारों से दूर हट रहा है। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के धीरज का गलत विचार लगाना आरंभ करता है, क्योंकि परमेश्वर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता, क्योंकि वो तुरंत नीचे आकर मनुष्यों का न्याय नहीं करता। मनुष्य बहुत बार समझने लगता है कि वो अपनी बुराई से हट रहा है। वो सोचता है परमेश्वर के ऊपर अधिकारी है, वो बुद्धिमान था, उसने अपना पाप छिपा लिया। इससे भी अधिक सोचता है परमेश्वर उसके कामों को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसे अब भी आशीष और समृद्धि प्राप्त है। मैं समृद्ध हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे कपट को क्षमा कर रहा है। परमेश्वर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कपटी हूं या अनैतिक हूं, क्योंकि देखो मुझ पर आशीष है। इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मूर्ति पूजक हूं, क्योंकि देखो मेरे पास सब कुछ है। जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन और कार्यों का अनुमोदन करता है, तो लोग उसके अनुग्रह और लंबे धीरज का गलत अर्थ लगाते हैं। यही नहीं, वे गंभीर गलतियां करते हैं। परमेश्वर जानता है, देखता है, चिंता करता है, वो न्याय करेगा, क्योंकि वो न्याय फुर्ती से नहीं करता और दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता, क्योंकि वो आपको पश्चाताप का समय देता है। पश्चाताप का समय और अपने पापों से निकल आने का मौका देता है कि आप बचाए जाए, और वो आपके साथ धीरजवंत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परंतु ये कि सब पश्चाताप करे। आप जानते हैं यीशु मसीह के लौटने में देर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। जैसे पत्रस प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में कहता है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। लेकिन पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए इस समय पर ध्यान दे, परमेश्वर का धीरज मनुष्यों को बचाने के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने इतने लंबे समय तक धीरज धरा, क्योंकि वो बुरे काम को करने पर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता। लोग सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को पीछे हटा लिया है, कि यीशु फिर नहीं आएगा। कलीसिया का उठाया जाना और मसीह का आना ये स्वप्न की बातें हैं, इत्यादि कहते हैं। वे वचन का गलत अर्थ लगाते हैं और वे यीशु मसीह के आने के प्रति हंसी करते हैं, उपहास करते हैं। पत्रस भी कहता है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का धीरज कि मनुष्य बचाए जाए का गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर दयालु, प्रेमी, धीरजवंत और सहने वाला है। वो आपको मौके पर मौके देता है, लेकिन दुख की बात है, लोग परमेश्वर के धीरज और दया का गलत अर्थ निकालते हैं। इस तरह वे अपने मनों को बुराई में लगाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर बहुत दूर से देखभाल करता है कि मैं कैसे जीवन व्यतीत करता हूं। इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, वो कुछ नहीं जानता। वे अपने मनों और जीवनों को बुराई के लिए और बुरे जीवन के लिए दे देते हैं। ये दुखदाई और घातक गलती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई का गलत अर्थ लगाते हो। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 12। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए। याद करे, वो कह रहा था कि दुष्ट लोग दीर्घ आयु पाते हैं, धर्मी जवानी में मरते हैं और अधर्मी बहुत वर्ष जीते हैं। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 12 में आगे लिखा है, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। अंत में परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के साथ चलने का जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। परमेश्वर का भय मानना बुराई से दूर होना है। इसलिए मैं जानता हूं अंत में यही जीवन उत्तम है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बुराई को छोड़ दिया है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 13। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। अंत में परमेश्वर का न्याय आएगा, इससे कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर का न्याय आएगा, इसलिए मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि प्रभु मैं भय मानने वालों के साथ में हूंगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 13 और 14। और ना उनकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वो दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वो दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि ये भी व्यर्थ ही है। ये बातें भले और बुरे दोनों मनुष्यों के साथ होती है, एक सा अनुभव। धर्मी जन को कैंसर होता है और अधर्मी को भी होता है। धर्मी मनुष्य को समृद्धि मिलती है, अधर्मी को भी मिलती है। इसकी देखभाल कौन करता है? जो एक के साथ होता है दूसरे के साथ भी होता है, सब व्यर्थ है। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 15। तब मैंने आनंद को सराहा। ये लेखक का मानवीय विचार है, आनंद मनाना, क्योंकि इससे अच्छी वस्तु इस संसारिक जीवन में कोई नहीं है। शायद ये ठीक है। मनुष्य का सांसारिक जीवन नाम मात्र का है। हम नाम मात्र का जीवन जीते हैं। और सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 15 में आगे लिखा है, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़, एक दिन तो मर जाना है, इसलिए खाओ पियो और आनंद करो, सांसारिक जीवन। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 15 के अंत में लिखा है, और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जो कुछ आपके पास हो उसमें आनंद करना, क्योंकि बाद में तंगी होगी। सभा उपदेशक अध्याय 8 पद 16 और 17। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी ताह मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वो उसे ना पा सकेगा। मनुष्य कैसी भी खोज कर ले, वो परमेश्वर के भेद नहीं समझ सकता।